بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھی کام کرنے میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے موٹیویشن اور ایک ہوتی ہے ایبلٹی. جب بھی ہم کوئی کام نہیں کر سکتے یا کوئی اور نہیں کر رہا ہوتا تو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہوتی ہے. آئیدر وی اور دے آر ناٹ موٹیویٹڈ اور دے آر ناٹ ایبل. کچھ ٹریگرز ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتے, دے ول آلویز بی دیئر. اس میں آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو چینج کر. سو لک بیک اینڈ دین لک فارورڈ کہ آگے بھی تو میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو اس سے آپ کا جو اوور آل اینگر ہے نا, میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ یہ جو دن کا ہمارا اینگر ہوتا ہے جو بچوں کو تھوڑا سا ڈانٹ دیتے ہیں, دس از ناٹ ایز کروشل ایز دا ریزائڈنگ. وہ ایک جو اینگر ہوتی ہے نا جو ابل رہی ہوتی ہے دل کے اندر, اور وہ چیز جو ہوتی ہے وہ پھر آپ کی ہر جگہ نظر آتی ہے. آپ جیسے کسی سے بات کرتے ہو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اپنی سچویشن کو ایکسیپٹ کیا ہے یا یہ غصے میں ہے اس چیز کے بارے میں. جیسے وہ مینشن آتا ہے نا, جیسے ہسبینڈ کو اگر آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, جیسے یہ ٹاپک آتا ہے کوئی جوک آتا ہے آپ فوراً زہر اگلنا شروع کرتے. اٹ اسٹارٹس آف یو ہیو ناٹ ایکسیپٹڈ, آپ ایٹ پیس نہیں ہیں اپنی سچویشن کے ساتھ. سو ورک آن دیٹ. جتنا زیادہ غصہ آپ کا اس چیز سے کم ہوگا نا اور کسی چیز سے نہیں ہوگا. باقی ساری چیزیں جو ہیں, بچے ہوم ورک نہیں کرتے, صبح لیٹ اٹھ, یہ ساری چیزیں ہیں سیکنڈری, دیز آر سچویشنل پرابلمس. لیکن جو بڑے بڑے ایشوز ہیں نا ان کو آپ جتنا سیٹل ڈاؤن کریں گے اتنا ہی یو ول بینیفٹ فرام اٹ. ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے ہم کہتے ہیں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از وی آر ورکنگ وتھ پیپل ناٹ اگینسٹ دیم. سب سے پہلے جو اسرٹیونیس کا بندے کے ذہن میں آتا ہے, اٹس ویری انٹیمیڈیٹنگ. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے وی آر ڈوئنگ سم تھنگ ٹو سم ون. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از وی آر ورکنگ وتھ پیپل. وی ہیو ٹو لرن ٹو بی انٹر ڈیپینڈنٹ. ہم اوروں کے ساتھ مل کے رہیں, چاہے وہ اگریسو ہیں, چاہے وہ ڈیفیکلٹ ہیں, چاہے وہ جیسے بھی ہیں, وی ورک وتھ دیم اینڈ ناٹ ہرٹ آر سیلوز. ایسی کوئی سچویشن ہو جس میں ہمارے رائٹس اور ان کے رائٹس دونوں, میں کیا چاہتی ہوں اگلا کیا چاہتا ہے, دونوں کا ایک کامن گراؤنڈ, یو آر فائنڈنگ دا کامن گراؤنڈ. ٹھیک ہے, ون ون سچویشن. ایگزیکٹلی. اسرٹیونیس از بیلنس. کس چیز کا بیلنس؟ رائٹس کا بیلنس. یور رائٹس اور اگلے کے رائٹس دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے. نو برین مینٹالٹی میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اف جیسے پلان اے ڈزنٹ ورک دیر آر 25 ادر الفابیٹس. ٹھیک ہے. سو اف آئیدر اور اگر نہیں چل رہا تو دیر از آلویز اے تھرڈ آلٹرنیٹو, اے فورتھ ون, اے ففتھ ون. دیر سو مینی ادر تھنگز, یو جسٹ ہیو ٹو ایکسپلور. ون ون میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یو لوز اے بیٹل ٹو ون دا وار. آپ لانگ ٹرم سوچیں کہ میں, جیسے ہم بیٹیوں کی شادی کرتے وقت جو ایک نصیحت ہوتی ہے نا کہ شروع میں تمہیں بڑی تکلیف ہوگی بٹ آخر میں تم صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. دس از ویری ٹرو. دیر آر ٹائمس وین یو لک لائک یو آر لوزنگ بٹ یو آر ناٹ ریئلی لوزنگ. تو یو ول ناٹ لک ایٹ اونلی آج جو ہے نا میرے بات نہیں مانی. تو بہت ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ 20 ایسی باتیں مانتے ہیں جو انسگنیفیکنٹ ہوتی ہیں, بٹ دے ول گیٹ یو ٹو دا 80 امپورٹنٹ تھنگس لیٹر ان لائف جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں اپنا ویژن اور جو وہ ہے وہ کلیئر رکھیں ہمیشہ. تو یہ اسرٹیونیس از اباؤٹ وے. آپ نے اپنے پرپز کے مطابق, بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ اپنے رائٹس کو آپ فورگو بھی کر دیں گی فار اے بگر کاز. اٹ ول بی اے ڈیسیژن, مجبوری نہیں ہوگی. اور اس میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بس یہ چوائس ہے یا یہ چوائس ہے, میں جیتی تو اگلا ہارا, اگلا جیت گیا تو میں ہار گئی. وی ڈو ناٹ بلیو ان دیٹ. وی سے دیر آر مینی آلٹرنیٹیوز جس میں آئیدر اور نہیں ہے, جو کہ ایسی سچویشن ہے شاید ہم نے سوچی بھی نہیں ہوگی اپنے وہم و گمان میں, جو کہ آ جائے گا سولوشن ہمارے پاس. ٹھیک ہے. سو وی ول آلویز گو فار دس. تو آپ نے ہمیشہ ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہے تاکہ اگلے بندے کی ڈگنیٹی اور ساری چیزیں وہ رہیں. جو سولوشنز ہم کرتے ہیں وین وی کم ان دی نو برین, اسرٹیونیس از ون آف دی ٹاپ ٹولز. دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ اٹ ناؤ. کسی کو پتہ ہے سٹائلز آف کمیونیکیشن؟ دیئر آر فور, بٹ یو نو وچ ونز دے آر. پیسیو اور نان اسرٹیو, اگریسو اور اوور اسرٹیو. پیسیو اگریسو وچ از دی موسٹ کامن, اور اسرٹیو. سب سے پہلے پیسو اسٹائل. ٹھیک ہے, اس کو آپ غور کریں اور دیکھیں کہ یو نو وٹ آر وی ڈوئنگ وین وی کمیونیکیٹ پیسولی. وی ٹرائی ٹو اوائڈ کانفلکٹ اینڈ کنفرنٹیشن ود ادرز ایٹ آل کاسٹ, یعنی ناٹ ایز اے چوائس بٹ سم تھنگ دیٹ وی جسٹ ہیو بین پروگرام ٹو اوائڈ. دس مینس دیٹ وی آفن پٹ آر پرسنل بلیفس एंड राइट्स असाइड टू सपोर्ट द राइट्स ऑफ समवन एल्स. हम अपने राइट्स को छोड़ देते हैं ताकि किसी और का एजेंडा जो है वो काम कर सके. वी डोंट शेयर आवर ट्रू फीलिंग्स वॉन्ट्स एंड नीड्स विच मेक्स अस इमोशनली डिसऑनेस्ट. वी मे थिंक दैट आवर बिहेवियर डजंट कॉज एनी हार्म. आफ्टर ऑल वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल नॉट टू अपसेट एनीवन. बट वी आर मिस्टेकन. थिंक जब आप नो सिस्टम में सोचती है ना तो ब्लेम मेंटालिटी नहीं होती. आवर बिहेवियर लोअर्स आवर सेल्फ एस्टीम ओवर टाइम जैसे जैसे एंड लीव्स आवर नीड्स अनमेट. ये तो हम सबको पता है कि हम जब 5-6 साल बाद कंप्लेन करना शुरू करते हैं ना मैरिजेस, द मेन रीजन इज आवर नीड्स आर अनमेट. हमें खुद भूल जाता है कि हमारी नीड्स हैं क्या. वी डू नॉट ट्रूली डू नॉट रिमेंबर. अगर आप किसी से पूछेंगे आपका फेवरेट कलर क्या है, उसका जहन अपने हस्बैंड के फेवरेट कलर पे जाएगा इमीडिएटली. अच्छा ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. ये जो है ये चीज बहुत अच्छी. अच्छा हाँ मेरे हस्बैंड ने बड़ी तारीफ कर. यू कैन नॉट स्टे इन योर ओन माइंड. यू नो आपकी नीड कहां से आ गई बिकॉज यू हैव नेवर डन इट. उनका कसूर नहीं है इसमें. बार बार वही वाली बात. वी विल ओन आर मिस्टेक्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेयर वी आर टूडे. ठीक है हमने लालमी में किया है, वी शुड नॉट बी गिल्टी. बट हमने ही किया है ना, खुद किया है, हमने खुद ही ठीक करना है. बिकॉज मोस्ट पीपल नेवर एड्रेस आर नीड्स, वी मे फील नेग्लेक्टेड एंड बिल्ड अप फीलिंग्स ऑफ रिजेंटमेंट. दिस क्रिएट्स स्ट्रेन रिलेशनशिप्स एज वी एक्सपेक्ट अदर्स टू गेस व्हाट वी फील वांट एंड नीड. सबसे जो पैसिव लोगों की मुश्किल चीज होती है, दे वॉन्ट यू टू गेस. यू नो सो यू हैव टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली, असर्टिवली एंड क्लियरली कि आप क्या चाहती हैं. हम क्या करते हैं कि पैसिव कम्युनिकेटर्स जो होते हैं उनकी वर्बल क्यूज ये होती हैं, दे स्पीक वेरी स्लोली. आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते. दे विल टेंड टू शिफ्ट देयर आई कॉन्टैक्ट यू नो अराउंड एंड बॉडी लैंग्वेज उनका बहुत शोल्डर्स ढलके हुए यू नो बहुत ज्यादा उनका होता है. इन्हीं चीजों से आपको अंदाजा हो जाता है कि किस बंदे को मैंने. एम्प्लॉयज में भी हम उसी बंदे को दबाते हैं जो जरा ऐसा होता है. अग्रेसिव स्टाइल में आते हैं. व्हेन वी कम्युनिकेट अग्रेसिवली वी पुट आवर ओन राइट्स फर्स्ट एंड डिसरिगार्ड द राइट्स ऑफ अदर्स. फर्स्ट तो हमें रखनी है लेकिन वी डिसरिगार्ड द राइट्स ऑफ अदर्स. वी डोंट शो कंसर्न फॉर द फीलिंग्स वांट्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स बट वी डिमांड दैट आवर्स बी हर्ड एंड मेट. वी विल डू ऑलमोस्ट एनीथिंग टू गेट व्हाट वी वांट इवन इफ इट मींस कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग अदर्स. क्योंकि एम्पैथी नहीं है बिल्कुल. वी डू नॉट पुट आवरसेल्व्स इन अदर पीपल्स शूज. आप उसी वक्त कुछ करते हैं जब आप कुछ करना चाहते हैं. व्हेन यू मेक अ डिसीजन ऑल्दो वी मे गेट व्हाट वी वांट अग्रेसिव बिहेवियर लीड्स टू पुअर सेल्फ एस्टीम. क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो गए ना. And unhealthy relationships in many cases guilt and shame. क्योंकि हमारा जमीर तो जागा हुआ है. जब हम वो सब कुछ करते हैं तो बाद में वी ऑलवेज एक्सपीरियंस शेम एंड गिल्ट. और जब भी हम किसी कॉन्वर्सेशन या उसके बाद हेड ऑन किसी उसके बाद जब हम शेम या गिल्ट फील करें तो हमें ये देखना चाहिए कि वो भी अग्रेसिव इन द कॉन्वर्सेशन. क्योंकि उसके बाद ही ऐसा होता है. ठीक है. अच्छा इसमें बहुत डायरेक्ट स्टेडी स्टेयरिंग होती है. आई कॉन्टैक्ट नहीं, इट्स लाइक स्टेयरिंग डाउन समबडी. ठीक है. Or we glare or we stare. Our body posture is very stiff and rigid. We stand close to other to intimidate them. We try to, जैसे बच्चों के साथ हम करते हैं, we overpower, try to, you know, अपनी body के साथ उनको दबाना, things like that. We tend to over gesture when we are talking, making everything we seem very important. हाथों से बहुत ज्यादा करना, as if जो बात आप करें उसमें content इतना नहीं होगा, facts इतने नहीं होंगे, लेकिन आप इतना जोर जोर से करेंगे कि अगला बंदा थोड़ा घबरा जाए. यू नो सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली जिन लोगों की आवाज मेरी तरह लाउड है, टू बी वेरी केयरफुल कि क्या कंटेंट में इतना दमखम है या मैं आवाज के जोर पे ही सब कुछ बनवा रही हूँ. इसी तरह वर्बल और नॉन वर्बल एग्रेसिव कम्युनिकेशन, स्पीक इन अ लाउड वॉइस, अनफ्रेंडली टोन, वी आर एबल टू से नो इजिली विदाउट कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ अदर. इसमें आप अपने आप को जज करें. पैसिव अग्रेसिव स्टाइल इज द मोस्ट डेंजरस. मुझे तो सबसे खौफनाक यही लगता है. This style blends components from the passive style and the aggressive style. इन दोनों का combination है. ठीक है. When we use the passive aggressive style, we violate or disregard the rights of others. Like the aggressive person while attempting to look as if we are placing the rights of others first. दिल में हमारे जो है तूफान फूट रहे हैं, सामने से हम ये शो कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो मियाँ की बात बहुत मानती हूँ. आप मानती तो हैं लेकिन किस कॉस्ट पे, दिल में कितना जहर पाला हुआ है. जो बंदा हस्बैंड का नाम लेता है वो उबलना शुरू हो जाता है. आपने दिल से नहीं मानी बात, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और. यू आर डिसऑनेस्ट अबाउट योर फीलिंग्स एक जगह पे, दूसरी जगह पे देन यू आर ओवर डूइंग इट. वी सीम कंसर्न्ड अबाउट अदर्स फीलिंग्स वांट्स एंड नीड्स बट विल ओनली एक्ट ऑन देम टू मीट आवर ओन फीलिंग्स वांट्स एंड नीड्स. वी एक्ट दिस वे टू कंट्रोल एंड टू मैनिपुलेट अदर्स and to avoid direct conflict like the passive person. हम ये भी नहीं चाहते कि direct conflict हमारा हो जाए. Direct टकरा नहीं चाहते, उससे हम अपने आप को बचाना चाहते हैं. बट दैट्स वाई वी आर प्रिटेंडिंग कि कुछ भी नहीं है. दिस दिस इज ऑल ऑफ अस, मोस्टली अस. कोई बात बुरी लगी है, हम नहीं, वी विल नॉट ओन अप कि हाँ जी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी. नॉन वर्बल में यही होता है कि बिकॉज द वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस ऑफ द स्टाइल डू नॉट यूजुअली मैच, विल बी डिस्क्राइब टुगेदर, वी स्टे, रोल आर आईज बट डिनाई दैट एनीथिंग इज रॉन्ग. बॉडी लैंग्वेज हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि कुछ मसला है तो हम कहेंगे नहीं सब ठीक है. लेकिन जो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है वो कुछ और बता रही है. सो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक जंग चल रही है, मुनाफकत है. सो ये जो है इसका सबसे बड़ा नुकसान बताएं कि क्या होगा लॉन्ग रन में. यू विल नेवर विन पैसिव अग्रेसिव, क्योंकि आपके अंदर जो चीज है सबसे पहले तो हेल्थ बिल्कुल बर्बाद हो जाती है इससे. एक तो फीलिंग्स के इजहार से हमेशा आपको फायदा होगा, हमेशा आपके अंदर तो नहीं रहेगी ना, ठीक है. दूसरी बात ये, वी नेवर, एंगर मैनेजमेंट में और दुनिया की किसी भी फलसफे में वी नेवर ट्राई टू कंट्रोल अदर्स. हम सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबल हैं और अपना ख्याल रखते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हैं. अगला बंदा हमें वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे वो है, जैसे वो चाहता है. हमारा एंगर इसी से स्टार्ट होता है ना कि दिस शुड हैपन, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको एहसास होना चाहिए. हम ये कहेंगे कि अगर होना भी चाहिए तो नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट अदर पर्सन. लेकिन अब मुझे क्या करना है. एक तो ये भी एक मिथ है कि कुछ नहीं होगा, अगले बंदे को फर्क नहीं पड़ेगा. अगले बंदे को हमेशा फर्क पड़ता है. जब आप अच्छे तरीके से अपने उसका इजहार करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अल्लाह की जात तो है ना, जब हम कहते हैं ना तो उनके अंदर जो जमीर होता है वो जरूर उनको करता है क्लिक. मसला क्या होता है जब हम अग्रेसिव होते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, शो डाल देते हैं, उस बंदे को एक वो मिल जाती है कि तो है ही झगड़ालू. दे गेट, उनको गिल्ट नहीं होता फिर बिकॉज यू हैव मिसबिहेव्ड. खुद अपने बारे में सोचे, अगर कोई एम्प्लॉय भी आके आपको कहे कि बाजी आप बहुत अच्छी हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, हमेशा से आपने हमारे साथ कभी भी डिसरिस्पेक्ट, आप कोई एम्प्लॉय, आप इमेजिन करें आपने किसी एम्प्लॉय के साथ कोई बहुत बुरा काम किया, वो आके आपको बहुत अदब से कहता है कि बाजी आप हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छी रही हैं और हमेशा आपने हमारी हर चीज का बहुत ख्याल रखा है, लेकिन उस दिन जो आपने मुझे बात की मुझे बड़ी तकलीफ हुई, व्हाट विल बी योर रिएक्शन. हम सिर्फ अपनी बात करें, शर्मिंदगी होगी तो अगले बंदे को क्यों नहीं होगी. हम अगलों को क्यों इतना डायन और वो समझते हैं, अफरीद देव बंदे को हम इस वजह से नहीं बताते कि हमें उससे कोई, हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं. वी वॉन्ट रिलीज फॉर आर इमोशंस. आपका बच्चा आपके पास आए और आपको कहे मामा आई लव यू सो मच, यू मीन द वर्ल्ड टू मी, बट दिस मॉर्निंग आई गॉट वेरी हर्ट, फॉर एन यूल बी वॉश्ड आउट. ये अल्लाह का सिस्टम निजाम है. चाहे कोई बंदा स्किज़ोफ्रेनिया का भी शिकार हो ना, किसी भी मर कुछ भी हो, दैट ट्विंज ऑफ गिल्ट विल ऑलवेज, चाहे वो आपको माने नहीं, सॉरी ना करे, बट नेक्स्ट टाइम ही विल रिमेंबर. उसमें ये होता है कि आप अगले बंदे को भी देखेंगे, इफ द पर्सन इज फेयर तो आप फिर फेयरली उससे बात करें, अदरवाइज आप सॉरी ना कहें, आप एक्शन से तलाफी कर लें. सदका एंड दुआ करना उस बंदे के लिए इज वेरी इफेक्टिव. आपके दिल से बहुत कीना निकल जाता है बट इट डज नॉट क्रिएट दैट. और उसमें फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी बात किए बगैर कि आई एम सॉरी, आप जनरली उस चीज को एड्रेस कर सकते हैं कि हाँ ये करना गलत है. यानी वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो उसके अंदर है ना, उसको आप एड्रेस कर सकती हैं, बजाय ये कहने कि हाँ मैंने मैंने ये काम किया. ठीक है, यू जस्ट से हाँ ये चीज जो है ना, ये कोई भी करे दिस इज रॉन्ग. सो आपने अपने अल्फाज से तो उसको निगेट कर दिया ना, जो भी आपसे हो गया था उस वक्त. अच्छा, अब हम असर्टिव स्टाइल पे आते हैं. पैसिव अग्रेसिव हो गया. पैसिव अग्रेसिव का बी वेरी विजिलेंट इन योर सेल्फ बिकॉज ऑल ऑफ अस आर पैसिव अग्रेसिव. चाहे हम ना माने, चाहे हम कुछ कहें, मोस्ट ऑफ अस आर पैसिव अग्रेसिव. ठीक है, असर्टिव दिस स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन अलाउज अस टू अफर्म आर ओन राइट्स एज वेल एज द राइट्स ऑफ अदर्स. वी आर एबल टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स, वॉन्ट्स, नीड्स ओपनली एंड रिस्पेक्टफुली एज दे अकर. जैसे जैसे होती जाती हम साथ साथ उसको करते हैं. वी डू नॉट लेट थिंग्स पाइल अप, इतना ज्यादा पाइल अप नहीं करने देते हम कि वो सिचुएशन जो है बाद में खराब हो जाए. ठीक, वी एक्ट इन आवर ओन बेस्ट इंटरेस्ट विदाउट ट्राइंग टू मेक अदर्स अनकंफर्टेबल. अगर अगला खुद अनकंफर्टेबल होता है, आपने उसकी कोई कोशिश नहीं की, वो उसका अपना मसला है, लेकिन आप अपने बेस्ट इंटरेस्ट में फैसले करते हैं विदाउट कॉजिंग हार्म टू एनीबडी. आपने अपनी पूरी कोशिश की कि सब कंफर्टेबल रहें. खुद कंफर्टेबल रहना उनकी जिम्मेदारी है. आपने पर्सनली एक एक को जाके कंफर्टेबल नहीं करना. व्हेन वी कम्युनिकेट वी आर ओपन टू हियरिंग अदर्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड नीड्स एंड आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज. अगर हमारे हस्बैंड हमारे बारे में कुछ नेगेटिव कहता है, वी शुड बी एबल टू लिसन टू इट. अगर वो कहता है कि तुम ऐसी हो, तुमसे मुझे ये फील होता है, इफ योर हस्बैंड इज सेइंग एनीथिंग इवन इफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, यू शुड बी एबल टू लिसन टू इट. दे जस्ट ओपिनियंस एंड देर फीलिंग्स. जैसे आप अपनी फीलिंग्स का इजहार का आपको हक है, औरों को भी हक होना चाहिए अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की. डू नॉट स्टॉप अदर्स एंड से के यू नो ये तुमने क्या कह दिया, मुझे बहुत बुरा लगा. लेट देम कम आउट विद ऑल देयर ट्रू फीलिंग्स एंड देन यू विल से कि मुझे ऐसे फील हुआ आपके कहने से, या मैं ये करना चाह रही थी, आपको ऐसे फील हुआ, यू नो. सो देन यू विल गो ऑन. लेकिन पहला हक ये, when we communicate, we are open to hearing others express their feelings and needs and are willing to compromise. We maintain a balance between giving, taking and asking for help. That causes a lot of anger too. आपने एक balance रखना है. अगर आपको feel हो रहा है एक बंदा इतना ज्यादा मुझसे advantage ले रहा है कि आगे मेरे लिए करना मुश्किल है, मेरे दिल में बुग्ज और कीना बन रहा है, तो then आपका जो bigger war है वो lose हो रही है. So you should be able to say politely no. अक्सर passive लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा controlling होते हैं. We want to control others. इसको खुश करना है मैंने, इसको जो है मैंने ये करना है, इसको मैंने कंफर्टेबल करना है, इसको मैंने ये फीलिंग देनी है. इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट कंप्लीट. लेकिन यू हैव टू स्टार्ट विद वेरी स्मॉल स्टेप्स एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बी असर्टिव विद योरसेल्फ. अकेले में इफ यू आर असर्टिव विद योरसेल्फ अदर थिंग्स विल कम. कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, हर चीज, खुशी. आप खुद खुश नहीं है तो आप किसी और को कैसे, बच्चों को और सबको. असर्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटर्स यूज डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट विदाउट स्टेयरिंग. We have a relaxed body posture and use appropriate gestures while speaking. We will sit or stand at the same level as the person we are speaking with. We don't tower. Our facial expression matches how we are feeling and what we are saying. ठीक है? अगर आप किसी के घर जाते हैं और आपको सख्त भूख लगी और वो कहते हैं कि खा लो और आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है. You know, even इस तरह की चीजों में just be honest. लगी है आप जरूर ले लें, नहीं लगी तो आप कह दें कि इस वक्त मैं नहीं खा सकूं. यू नो हमने इन चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतने छोटे लेवल पे भी वी कैन नॉट बी ऑनेस्ट. सबसे अहम बात, इस वक्त आपको लग रहा होगा मैं तो पैसिव हूं, मैं तो अग्रेसिव हूं, मैं तो पैसिव. ऐसा नहीं होता. वी आर ऑल अ कॉम्बिनेशन. अपने से छोटों को हम दबाते हैं. वी आर वेरी अग्रेसिव विद एम्प्लॉयज, लोअर तबका के लोग. अल्लाह ने जिस बंदे को हमारे हाथ के नीचे कर दिया है, पेट्स. अच्छा, फिर शैतान के लिए बिल्कुल रहा हमवार. ठीक है? अच्छा, जो हमसे ऊपर हैं उनके साथ हम पैसिव हैं. जी जी जान, उससे तो हमारी जबान नहीं थकती. और असर्टिव हम किसी के साथ नहीं होते. पैसिव अग्रेसिव हम बहुत अबंडेंटली होते हैं विद पीपल हु आर आइदर इक्वल, और जिनके साथ कोई रिश्ता हो, जैसे हस्बैंड, मोहब्बत का कोई इस तरह का रिश्ता हो, उनके साथ हम बहुत पैसिव अग्रेसिव. फ्रेंड्स के साथ भी हम पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं. कुछ एक दो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम असर्टिव होते हैं. दे आर द ओनली पीपल वी आर कंफर्टेबल विद. सो वी हैव टू वर्क इन लिटिल लिटिल पीसेस. बॉडी लैंग्वेज से अगर आप असर्टिव हो सकते हैं, कहीं कुछ जिस वक्त फीलिंग्स का इजहार ना कर सके किसी और टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से फीलिंग्स का इजहार कर दें. डू नॉट हैव पेंट अप फीलिंग्स. अग्रेसिवली नहीं कहना. हाँ, अग्रेसिवली नहीं करना. देखिए, एम्बैरेसमेंट हमेशा उस वक्त होती है. आप उसको एनालाइज करें ना सिचुएशन को कि क्या चीज थी. चाहे कुछ भी हो, यू नो यू विल स्टैंड योर टाइम बट यू विल से इट वेरी पोलाइटली. आपकी टोन जो है ना वो सब कुछ कह देती है. बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देता है. अक्सर हम जो फील कर रहे होते हैं वो एंगर होता ही नहीं है. एंगर इज जस्ट अ फेमिलियर वर्ड फॉर अस. देयर आर टाइम्स व्हेन यू फीलिंग हर्ट, यू आर फीलिंग डिस्टर्ब्ड, वी आर फीलिंग अटैक्ड, वी आर फीलिंग डाउटफुल. और हमारी जबान को ही देख ले, फीलिंग वर्ड्स ही नहीं है. उससे अंदाजा होता है कि हमें पता ही नहीं हम क्या फील कर रहे हैं, तो हम क्या खाक असर्टिवनेस करेंगे. So you will go through these and हर मौके पे आपने exactly pinpoint करना है कि मैं क्या feel कर रही हूँ. ये जो चीज है ना, this is very important कि आप क्या feel कर रही हैं. उसके बाद आपका जो plan बनेगा जितना सही. कल मैं सोच रही थी कि जब हम school में maths के questions करते हैं, ठीक है, तो multiple step questions होते हैं. ये हमारे पास सवाल होता है, ठीक है, उसके फिर मुख्तलिफ steps होते हैं. यहाँ पे जाके उसका answer निकलता है, ठीक है. अब let's suppose यहाँ हमसे गलती हो गई. हम जो है यहां पे फंसे हुए हैं, यहां पे फंसे हुए, घंटों लग गए, पेपर का टाइम खत्म हो गया, वी स्टक हो गई है. जवाब ठीक निकलेगा. हम कहते हैं हम गुस्से में और उसी में हम सारा दिन लगा देते हैं. हमें हर वक्त गुस्सा आता है. मैं तो हुई बहुत गुस्से वाली. नेगेटिव पैटर्न्स के अलावा सब कुछ गड़बड़. हमने सबसे पहले यहां से शुरू करना है. ये सिचुएशन थी, दिस इज व्हाट हैपेंड. ये जो है ना, ये बचपन में मेरी किसी चीज से मैच तो नहीं करती. यू हैव टू गेट टू द राइट रॉन्ग स्टेप. Identifying trouble spots. अक्सर हमारे कुछ ट्रबल स्पॉट्स होते हैं. कुछ लोगों के साथ हमें ज्यादा मुश्किल हो रही होती है. ऐसे लोगों के साथ हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है. आईने के सामने, किसी फ्रेंड के साथ, अपने साथ अकेले. प्रैक्टिस योर असर्टिवनेस. जुमले लिख के बेशक 10-10 दफा दोहराएं बिफोर यू टॉक टू दैट पर्सन और बिफोर यू गो मीट दैट पर्सन. सॉरी को कम से कम करें. अंटिल यू हैव मेड अ जेन्युइन मिस्टेक डू नॉट से सॉरी ऑल द टाइम. इट्स नॉन असर्टिव, इट्स वेरी पैसिव. यू से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है इट विल टर्न द अदर पर्सन गो सिस्टम ऑन. अभी मैं थोड़ा सा क्विकली आई विल गो ओवर अ लिटिल समरी जो मैंने बनाई थी. ओके सबसे पहले सही गुस्सा और गलत गुस्सा एक चीज होती है. सही गुस्सा वो होता है जिसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जो हमें अच्छी जगह पे लेके जाते हैं. वी आर नॉट पावरलेस, वी जस्ट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. और इतनी प्रैक्टिस कि जैसे हम मैथ सवाल करने में ना, अलजेब्रा करने में जो हम प्रैक्टिस करते थे ना, एक सवाल 6 दफा पहले से आंसर याद होता, हम फिर भी कर रहे होते थे. वी नीड प्रैक्टिस लाइक दैट. इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. अच्छा सबसे पहले द राइट पर्सन. दिस इज अ क्विक समरी. सबसे ज्यादा जो हमारे जिंदगी में मसला होता है वो ये होता है कि हम किसी और का आया हुआ गुस्सा कहीं और निकाल रहे होते हैं. इट्स डिस्प्लेस्ड एंगर. सबसे पहले हमने ये देखना है कि उस गुस्से का असल मालिक कौन है, हकदार कौन है. हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है. आपने सबसे पहले देखना है मुझे असल गुस्सा किस बात पे आ रहा है. सेल्फ अवेयरनेस. टारगेट द राइटफुल ओनर. अच्छा व्हाई डोंट वी टेक इट आउट ऑन द असल बंदे को. एक तो हम उस बंदे से हो सकता है इंटिमिडेट होते हो, डरते हो उस बंदे से. हमें एक्सप्रेस करना ना आता हो, हम हमारी असर्टेनेस स्किल्स अभी उस जगह तक नहीं पहुंची कि हम कर सकें. और दूसरा हम पिन पॉइंट ही ना कर पाए कि मसला कहाँ है. हमने इस पे बहुत गौर करना है कि हम किस बात पे खफा हैं. फीलिंग वर्ड्स को खंगालें, कौन सी वो फीलिंग है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर सोचते रहें ताकि आप गलत जगहों पर गुस्सा ना निकालें. वेरी इंपॉर्टेंट, अनकवर द रियल इशू, देन यूज और लर्न द राइट टूल्स फॉर कॉम्बैट. सबसे पहले असल इशू, असल जो फीलिंग है उसको अनकवर करें. फ्रस्ट्रेशन है, हेल्पलेसनेस है, डिस्टर्बेंस है, आप थकी हुई हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्या मसला क्या है, उसको अनकवर करें. ट्राई टू वर्क ऑन इट. द राइट डिग्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ओके टू बी एंग्री बट प्लीज सेट द थर्मोस्टैट. एटलीस्ट यू शुड नो कि डिग्री में भी मसला था इशू के अलावा. द राइट टाइम, प्लान टू डू समथिंग एंड व्हेन यू आर लाइकली टू सक्सीड देन यू एग्जीक्यूट. आपने मसला हल अनकवर कर लिया, सब कुछ कर लिया, प्लान भी बना लिया. यू हैव टू चूज अ राइट टाइम. आपने उस वक्त करना है अपना एग्जीक्यूशन जब आपको पता हो कि अब मेरे सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. और अक्सर ऐसा टाइम होता है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर इट, तो अल्लाह ताला बहुत हेल्प करते हैं इस तरह की चीज. द राइट पर्पज, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट कर लें. दूरअंदेशी का तकाजा क्या है. दूसरा ये कि सच्चाई ये है कि वी कैन नॉट कंट्रोल एनीबडी और एनीथिंग, वी कैन ओनली कंट्रोल आर ओन सेल्फ. तो हमारे जो मेन कल्प्रिट होता है, जो स्टीयरिंग व्हील होता है हमारे गुस्से का, वो होता है कि व्हाई इट शुड हैपन दिस वे एंड इट शुड हैपन दैट वे. शुड नहीं होना चाहिए, बस ये बंदा ऐसा कर रहा है, उसको नहीं कंट्रोल कर सकती. व्हेन वी ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत हेल्पलेसनेस और एक बहुत ही खराब फीलिंग. कंट्रोल इशूज को जरूर वो करें, गूगल करें प्लीज. कंट्रोल फ्रीक्स, कंट्रोल इशूज, कंट्रोलिंग बिहेवियर्स. People will treat us the way they want and life is not fair. ये बड़ा बड़ा लिख लें इन नोट्स के ऊपर. नहीं चलता ये, जन्नत नहीं है, वी आर इन जाए इम्तिहान. ठीक है, राइट पर्सन हो गया, राइट इश्यू हो गया, राइट वे, राइट पर्पज, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया. एंड देन द राइट वे इज टू बी असर्टिव, नॉट टू एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी फेयर एंड टू बी असर्टिव. तीन हम बोलेंगे, केस स्टडी करेंगे, तीन हम ट्रिगर्स लेंगे एंड देन वील क्विकली पार्टिसिपेंट्स बताएंगे कि इसका क्या हाल है. अच्छा एक मैंने लिखा था कि किड्स आर गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल एंड दे या होमवर्क या कुछ भी या यू आर गोइंग समवेयर एंड यू हैव टू गेट समथिंग डन बिफोर दे गोइंग एंड दे ऑलवेज दे वेरी स्लो. एक एक जरा यूं जा रही है, सर बाल यूं ब्रश हो रहे हैं और आप चीखे मार रहे हैं कि क्या हो गया है. सो दिस इज वन ट्रिगर. ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर ली ना, अपना लॉग बना लिया. दूसरा ट्रिगर आपने ये लिख लिया कि कोई बड़ा मदर इन लॉ, खाला, फुप्पी, कोई घर में कोई बड़ा रहता हुआ कोई भी इज सार्कास्टिक. अच्छा फिर उसके बाद हस्बैंड, उसकी कोई ऐसी आदत है. लेट्स सपोजिंग ही इज टू क्वाइट. सबसे पहले मैं क्या हाल है, प्लान planning and time management. ठीक है, kids are getting ready in the morning, every day there's chaos and बहुत ज्यादा टेंशन है. हस्बैंड आपको डांट रहे, तो तुम कभी टाइम पे तैयार नहीं होती, एक तो फलाना नहीं हो रहा एंड देर तीर बरस रहे हर तरफ एंड दिस इज अ वेरी टिपिकल सिचुएशन. या इवनिंग में आपको कहीं जाना होता है जॉब पे या कहीं एंड यू हैव टू गेट द होमवर्क डन बिफोर एंड दैट इज हैपनिंग. ठीक है, सो इसका प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग, ये इसके दो वो हैं. फॉर्मूलास, दीज आर द फॉर्मूलास, ठीक है। यानी कि आप गोल सेटिंग बच्चों के साथ करेंगे और उनको बताएंगे कि सुबह हमारे पास ये सिचुएशन होती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं चाहती हूँ इसका हम कोई सोल्यूशन निकालें, आप मुझे सोल्यूशन बताएं क्या क्या हो सकता है। और बच्चे जो कितने अच्छे सोल्यूशंस देते हैं ना, इट्स अमेजिंग। और हो सकता है ये आपको वक्तन फवक्तन करना पड़े, सो यू विल सिट देम डाउन, गोल सेटिंग करेंगे एंड यू विल राइट डाउन थिंग्स। अगर मैं आपको 15 मिनट पहले जगा दूं, हाउ विल दैट गो? अच्छा, मैं तो 15 मिनट पहले नहीं जा सकती, रात को मुझे बहुत काम करने होते हैं। कैन आई गिव यू एन अलार्म क्लॉक? कैन आई डू दिस? कैन आई डू दिस? ब्रेनस्टॉर्म एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस। टाइम मैनेजमेंट इज द इशू इन दिस केस, ठीक है। सम एल्डर इन द हाउस इज सार्केस्टिक, बताएं क्या फॉर्मूला हो सकता है?
इमोशनल एग्जिट,
यस। एंड अगर बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ इट्स योर मदर इन लॉ और योर मदर और समबडी लाइक दैट, ठीक है, दीन के लिहाज से भी हम पे बहुत वर्क, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, गिव देम गिफ्ट्स, गिव देम क्वालिटी टाइम, हफ्ते में एक दिन और महीने में एक दिन और दो महीने में एक दिन, लंच अलोन विद दैट पर्सन और सम टाइम, लेट्स हैव कॉफी टुगेदर। ऐसे बंदे के लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है टू बी सार्केस्टिक विद यू। कोई गिफ्ट्स वगैरह ऑल्सो वर्क वेरी वेल, क्योंकि हदीस में है कि तोहफे से बढ़ती है मोहब्बत, दिस वर्क्स वेरी वेल। सेकेंडली, अपनी फीलिंग्स उस बंदे से रिलेटेड नहीं, आम लोगों से रिलेटेड बहुत डिस्कस करें, उस बंदे के साथ अपनी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन कर लें। जेन्युइन प्रेज एंड जेन्युइन रिस्पेक्ट, ट्राई टू रिस्पेक्ट देम फ्रॉम द हार्ट। आप फौरन उनको दिल से सोचें कि इस बंदे ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, कितनी टफ चाइल्डहुड के साथ मेरे हस्बैंड को बड़ा किया है, या मेरे भाइयों को, या मुझे, इफ इट्स योर मदर। सो व्हेन यू वर्क ऑन इट एंड जेन्युइन रिस्पेक्ट आती है, इट स्टार्ट्स शाइनिंग थ्रू एंड इट हेल्प्स अ लॉट ओवर टाइम। कोई ऐसा मौका जरूर आएगा कि इट विल रीप बेनिफिट्स। ये मैं नहीं मान सकती कि आप ये कोशिश कर रही हैं और इसका कोई हल ना निकले, कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जरूर जाएंगी। Husband is too quiet, you're bursting over, you're boiling over, he's not even ready to listen. इसमें क्या आएगी? इसमें expectation management आएगी। By now, अगर शादी का पहला साल है या 6 महीने, तो उसमें तो आपका हक बनता है कि आप बहुत अपसेट हो, लेकिन अगर 10 साल हो गए, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि माई हस्बैंड इज टू क्वाइट। तो अगर मैं बात करूंगी, उसकी समरी करें, एक दो लाइन्स बोलें, और पहले से आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। एक्सपेक्ट वट इज गोइंग टू कम योर वे। अलावा भी जाहिर है, आप थोड़ा सा वो भी कर सकती हैं कि उनको कह दें, मैं आपसे एक बात करने जा रही हूँ, आई नो यू डोंट लाइक इट, आई नो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आई नो, लेकिन आप सुन तो सकते हैं ना, कैन यू गिव मी 5 मिनट्स, बोरो टाइम, एंड देन कहें बस मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी, एंड देन बर्स्ट आउट, यू नो, यू कैन डू लिटिल लिटिल थिंग्स। वो भी लिख लिया करें जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, इफ यू कीप द स्ट्रेंथ्स अलाइव इट हेल्प्स अ लॉट। तो हमें पता नहीं होती कि हमें जो चीज सामने से बुरी लग रही होती है, उसी पैकेज डील में वही क्वालिटी, वही वो जो है वो हमें फायदा भी दे रही होती है। Assertiveness और बाकी सारी चीजें हम भी किसी के वायलेट ना करें एंगर मैनेजमेंट के थ्रू, और हम किसी को ना करने दें असर्टिवनेस के थ्रू। जैसे जैसे हम अपने लेवल पे कोशिश करते जाएंगे, साथ साथ जो अगली जनरेशन है ना, वो हमसे बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। और सबके जारिया हमारे लिए होगा इंशाल्लाह।